नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 के विजेताओं से करेंगे बातचीत। केंद्र सरकार ने कहा, देश में पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध, व्यावसायिक रसोई गैस सिलेंडर का वितरण भी शुरू। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए कल होगा मतदान। आज एनडीए विधायकों को मॉक पोल के माध्यम से मतदान करने की दी जाएगी जानकारी। और मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश और तेज हवा चलने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से शुरू होने वाले माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्तर के विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को केंद्रीय बजट पर चर्चा करने और विकसित भारत के निर्माण पर अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहन देना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य युवा प्रतिभाओं को सहभागी शासन और आर्थिक नियोजन से जोड़ना है। इसके साथ ही ये पहल नीति निर्माण में युवा पीढ़ी की भूमिका को मजबूत करना और 2047 तक आत्मनिर्भर विकसित भारत के निर्माण में योगदान भी देगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर आयोजित माई भारत बजट प्रतियोगिता 2026 में 12 लाख से अधिक युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया और 47,000 निबंध जमा किए गए। केंद्रीय बजट 2026 व्यापक रूप से युवा शक्ति प्रेरित बजट माना जा रहा है। बजट शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, नवाचार और भविष्य के लिए तैयार विकास के अवसरों में निवेश के माध्यम से देश के युवाओं को सशक्त बनाने पर विशेष बल देता है। इस संदर्भ में माई भारत प्लेटफॉर्म पर आयोजित माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 एक अनूठी पहल के रूप में उभरी है। भारतीय ध्वज वाले दो जहाज शिवालिक और नंदा देवी ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित पार कर लिया है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने ये जानकारी दी है।
इनमें करीब 92,700 मेट्रिक टन एलपीजी है और इनका अराइवल पोर्ट मुंद्रा और कांडला होगा और इनकी एक्सपेक्टेड अराइवल डेट्स 16 मार्च और 17 मार्च होंगी।
इधर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया है कि किसी भी खुदरा दुकान या वितरक के पास एलपीजी की कमी नहीं है और पर्याप्त मात्रा में डीजल और पेट्रोल भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि देश में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। संयुक्त सचिव ने नागरिकों से एलपीजी सिलेंडर की जल्दबाजी में बुकिंग नहीं करने और आवश्यकता पड़ने पर डिजिटल बुकिंग करने का आग्रह किया है।
लास्ट डिलीवरी से नेक्स्ट बुकिंग के बीच में अर्बन एरिया में मिनिमम 25 डेज का गैप है और रूरल एरियाज में ये 45 दिन का है। सभी देशवासियों से एक अपील है कि कृपया डिजिटल जो बुकिंग के आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं उनको यूज करें। कोई भी जरूरत नहीं है कि कोई भी किसी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के पास जाकर लाइन में खड़ा होकर बुकिंग करे या सिलेंडर की डिलीवरी ले।
सुश्री शर्मा ने बताया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडरों का वितरण शुरू हो गया है। पटना जिले में रसोई गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एसएम ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं ने सिलेंडर की बुकिंग के लिए नंबर लगाया है उनको शीघ्र आपूर्ति के लिए एजेंसी को निर्देश दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
जिलाधिकारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि गैस एजेंसी के कार्यालय पर अनावश्यक रूप से न जाएं और वहां पर भीड़ की स्थिति नहीं बनाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए नियंत्रण कक्ष के फोन नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं। बिहार राज्य रसोई गैस सिलेंडर वितरण संघ के महासचिव डॉक्टर राम नरेश सिन्हा ने बताया कि रसोई गैस की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा है कि आपूर्ति और सॉफ्टवेयर दोनों में सुधार हो गया है। नंबर लगाने के 2 से 3 दिनों के अंदर ही रसोई गैस सिलेंडर मिल जाएगी। वहीं दानापुर शाहपुर अनुमंडल क्षेत्र के एक गैस एजेंसी के डिलीवरी बॉय पर गलत तरीके से रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति करने पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इधर मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक विनायक मिश्र ने बताया है कि बच्चों के भोजन बनाने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए पेट्रोलियम कंपनियों को एक पत्र भेजा गया है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में भोजन व्यवस्था नियमित रूप से जारी रहे, सरकार इसकी पूरी व्यवस्था कर रही है। समाचार कक्ष से मैं अनुपम कुमार।
बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर कल होने वाले मतदान प्रक्रिया की जानकारी के लिए आज एनडीए विधायकों को मॉक पोल प्रशिक्षण दिया जाएगा। भाजपा के मुख्य सचेतक विनोद नारायण झा ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सरकारी आवास पर विधायकों को मतदान करने की पूरी जानकारी दी जाएगी। मुख्य सचेतक ने कहा कि इस दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, यह जानकारी भी दी जाएगी। इधर महागठबंधन प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए विपक्षी दलों की एक बैठक आज राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में उनके आवास पर होगी। गौरतलब है कि एनडीए के 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और प्रदेश महामंत्री शिवेश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर शामिल हैं। एनडीए के 5वें प्रत्याशी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हैं। इधर राजद ने अमरेंद्र धारी सिंह को प्रत्याशी बनाया है। मतदान कल सुबह 9 बजे शुरू होगा और 4 बजे तक चलेगा। 5 बजे से मतगणना का कार्य होगा और देर रात तक नतीजे घोषित कर दिए जाने की संभावना है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने विधानसभा परिसर और विधायक आवास की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। श्री कुमार ने जिला प्रशासन और पुलिस के वरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया कि बिना पहचान पत्र के किसी व्यक्ति को विधानसभा परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाए। विधानसभा अध्यक्ष ने परिसर के सभी प्रवेश द्वारों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को दुरुस्त कर सख्त निगरानी सुनिश्चित करने और सादे लिबास में सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती करने को भी कहा है। अध्यक्ष ने वीरचंद पटेल पथ और आर ब्लॉक स्थित विधायक आवासों की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने तथा आसपास मोबाइल सुरक्षा वाहनों से नियमित गश्त सुनिश्चित करने को कहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। राज्य में जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले 7 वर्षों में 26,383 तालाबों का जीर्णोद्धार कराया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया है कि राज्य में कई तालाबों के जीर्णोद्धार से भूजल स्तर में वृद्धि हुई है और सिंचाई क्षमता में सुधार हुआ है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग किया जाएगा। विभागीय मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि AI का प्रयोग म्यूटेशन अपील और BLDR एक्ट से संबंधित मामलों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ता DCLR और डाटा एंट्री ऑपरेटरों को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है। राज्य के अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 मार्च कर दी गई है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नामांकन की तिथि आज समाप्त हो रही थी। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की सूचना के अनुसार बिहार के निवासित अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नामांकन लिया जाएगा। इसके तहत वर्ग 9 और वर्ग 11 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। हमारे अररिया संवाददाता ने बताया है कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सहायक निदेशक ने इस संबंध में सूचना जारी की है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज हल्की बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस दौरान राज्य के तराई वाले क्षेत्रों के साथ ही दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भागों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। वहीं आज किशनगंज जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि पटना जिले में कल आंधी बारिश की संभावना बनी हुई है।
किशनगंज जिला के एक या दो स्थानों में वर्षा होने की संभावना है। तत्पश्चात अगले दिन पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, उत्तर पूर्व एवं दक्षिणी भागों के जिलों के एक या दो स्थानों में वर्षा की संभावना है। दिनांक 15 मार्च 2025 को राज्य के तराई वाले जिलों, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में एक या दो स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है।
इधर पिछले 24 घंटों के दौरान भभुआ 37.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। उत्तराखंड में खेली जा रही राष्ट्रीय थ्रोबॉल प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने हरियाणा और मध्य प्रदेश को पराजित कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित वनडे क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में बेगूसराय ने नालंदा को 6 विकेट से पराजित कर दिया। फाइनल मुकाबला आज खेला जाएगा। फाइनल में बेगूसराय का मुकाबला कटिहार से होगा। इधर राजधानी पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में चल रहे द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग प्रतियोगिता में मगध वॉरियर लगातार जीत के साथ पहले स्थान पर बनी हुई है, जबकि सीवान टाइटन दूसरे और सारण स्ट्राइकर्स तीसरे स्थान पर है। रोहतास जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। जिले के दिनारा थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 319 पर 2 मोटरसाइकिल की भीषण टक्कर में 3 युवकों की मौत हो गई। इनमें से 2 लोगों के शव एक नहर से बरामद किए गए हैं, वहीं 1 युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इधर चेनारी थाना क्षेत्र अंतर्गत उर्दा गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत पहले चरण में राज्य में 2.5 लाख उपभोक्ताओं के घरों की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इस योजना के तहत प्रत्येक घर की छत पर 11 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सोलर पैनल लगेंगे। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने पटना मेट्रो से जुड़ी खबर पर लिखा है, मोइनुल हक स्टेडियम से राजेंद्र नगर टर्मिनल के बीच सुरंग की खुदाई शुरू। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश ने दिया एकजुटता का संदेश। दैनिक भास्कर ने ईरान इसराइल युद्ध पर लिखा है, ट्रंप बोले हॉर्मुज खोलने के लिए चीन और अन्य देश भी युद्ध पोत भेजें। प्रभात खबर ने बोधगया वैश्विक संवाद 2026 कार्यक्रम के दौरान बिहार संग्रहालय महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह के हवाले से लिखा है, बोधगया शोध और शांति केंद्र के रूप में स्थापित होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 के विजेताओं से करेंगे बातचीत। केंद्र सरकार ने कहा, देश में पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध, व्यावसायिक रसोई गैस सिलेंडर का वितरण भी शुरू। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए कल होगा मतदान। आज एनडीए विधायकों को मॉक पोल के माध्यम से मतदान करने की दी जाएगी जानकारी। और मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश और तेज हवा चलने की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।